أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آج میرا خیال تھا کہ محبت الہی کے تعلق میں ہی ایک اس مضمون کو جو میں پہلے شروع کر چکا ہوں آگے بڑھاؤں گا, لیکن بیچ میں کچھ اور باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا مجھے مرکز سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارا مالی سال, پہلا مالی سال ختم ہو کر دوسرا شروع ہو رہا ہے, اور نئے سال کے آغاز کا اعلان جولائی کے پہلے ہفتے ہی میں کیا جاتا ہے. اس ضمن میں میں پچھلی دفعہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اب ہم نے کچھ طریقہ کار بدلا ہے, اگرچہ اگلے مالی سال کا اعلان تو آج ہی ہوگا, لیکن مالی تفاصیل اور مختلف ممالک کے چندوں کے موازنے آج نہیں ہوں گے, بلکہ جلسہ سالانہ کی جو اعداد و شمار کی تقریر ہوا کرتی ہے اس میں سارا سال کے قواعد پیش کیے جاتے ہیں. اسی دوران انشاءاللہ اس سال بھی وہ قواعد پیش کیے جائیں گے. صرف ربہ سے آئے ہوئے اعداد و شمار کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کی تین بڑی جماعتوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خدا تعالیٰ کے فضل سے سارے پاکستان میں اہل ربہ کو مالی سال میں سب سے زیادہ بجٹ ادا کرنے کی توفیق ملی ہے, اور جماعت ربہ کراچی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور لاہور سے بھی, اور جماعت لاہور کراچی سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ تبدیلیاں ہیں جو فضیلتیں رونما ہو رہی ہیں. جو پیچھے رہ جانے والی جماعتیں ہیں ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے, مگر جو جہاں تک نیکی کی دوڑ کا تعلق ہے اس میں جو بھی آئے وہ خدا ہی کا گھوڑا ہے جو اول آ رہا ہے. وہ ایک کہہ لیں یا دو کہہ لیں یا تین کہہ لیں, مگر ہیں تو سب خدا ہی کے گھوڑے, سب پر خوشی ہوتی ہے. وہ جو مثال عرب گھوڑوں والی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی, غالباً اس سے پہلے دو تین دفعہ تو ذکر کر چکا ہوں, مگر ہے بہت پیاری, اور چندوں کے مقابلوں کے تعلق میں وہ بیان کر دی جائے تو دلوں میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے. ایک عرب کو اپنا ایک گھوڑا بہت پیارا تھا جو کبھی کسی دوسرے گھوڑے سے ہارا نہیں تھا, اور جتنے بھی عرب میں مقابلے ہوئے ان میں ہمیشہ وہی اول آتا تھا. ایک اس کا نمبر دو گھوڑا تھا جو نمبر دو آیا کرتا تھا. چوروں کو بھی بڑے فن آتے ہیں, اور جو مویشیوں کے چور ہیں وہ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنے فن کے, हम चूंकि जंग में आबाद हैं, रब्बा जंग में आबाद है, इसलिए जो चोरों का गढ़ है खासतौर पर मवेशी चोरों का, तो मुझे पता है बड़े बड़े माहिर फन लोग हैं ये। तो एक चोर ने उसका घोड़ा, नंबर एक घोड़ा चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तो उस वक्त तक वो घोड़े पर सवार होकर आगे जा चुका था। उसने अपने नंबर दो घोड़े को पकड़ा और उसके पीछे भगाया। क्योंकि वो घोड़ों का मिजाज का वाकिफ था, इसलिए बावजूद इसके कि घोड़ा नंबर दो था, उस मालिक के इशारों को ज़्यादा समझता था, इसलिए वो पहले घोड़े के करीब आ गया। जब वो उसको पकड़ने लगा तो उसको ख्याल आया कि ओहो, मेरा घोड़ा तो कभी किसी से नहीं हारा, क्या आज ये मेरे नंबर दो घोड़े से हार जाएगा। तो चोर को कहा, जा, इसी खातिर मैं तुझे छोड़ता हूँ कि मैं अपने घोड़े को बेइज्जत नहीं करना चाहता, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता कि वो कभी किसी से नहीं हारा। तो जब जमाते मुझे लिखती हैं कि हमारे लिए दुआ करो कि हम अव्वल आएँ और हम अपनी अव्वलियत को बरकरार रखें, तो मुझे ये लतीफ़ा याद आ जाता है। मगर फ़र्क यह है कि ये सारे ही घोड़े खुदा के घोड़े हैं, सारे ही उसको प्यारे हैं। जो भी आए हमें उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए, लेकिन आपस में बहरहाल उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। जो आलमी मुकाबले हो रहे हैं माल के, उनमें इंशाल्लाह मैं जमात अमरीका के गवाही भी आपके सामने रखूँगा। खुदा ताला के फजल से उन जमातों में है जो बड़ी तेज़ी से माली कुर्बानी में आगे बढ़ रही हैं। सर दस मुख्तसरन मैं इस साल के दो सालाना जलसों पर तबसरा करता हूँ, एक कैनेडा का और एक जमात यूनाइटेड स्टेट्स का। कैनेडा का जलसा भी खुदा ताला के फजल से बहुत कामयाब रहा है, पहलू से इंतजाम में कुछ नकायश जो पैदा होते रहे उसमें बाज़ मजबूरियाँ भी दरपेश थीं, मगर जहाँ तक कारकुनों का ताल्लुक है बहुत ही इखलास से उन्होंने काम किए हैं। एक भी वाकया किसी बदमजगी का नहीं आया और हरेक ने अतात को दर्जा कमाल तक पहुँचाया है। इस पहलू से कैनेडा का जलसा ख़ास तौर पर तबीयतों पर असरअंदाज था। दूसरा पहलू जो कैनेडा का खसूसी है, जिसमें कैनेडा हमेशा ही अमेरिका से आगे बढ़ा है, वो ऐसे गैरों से रवाबित हैं जिन पर वो सारा साल नेक असर कायम करते डालते हैं, और जब वो हमारे जलसों में शरीक होने के लिए आते हैं तो पहले ही दिल उनके जमात की तरफ मायल हुए होते हैं। इसके नतीजे में जलसे में शामिल होकर उनके अंदर बड़ी तेज़ी से पाक तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और फिर हमेशा अपने ताल्लुक को निभाते हैं। इस पहलू से अमेरिका के जलसे में अगरचे गैर भी आए, मुतासर भी हुए, लेकिन उनकी बड़ी तादाद वो थी जिनसे तमाम साल ताल्लुक नहीं रखा गया, बल्कि उनमें एक अजनबियत सी थी। और शायद ये अमेरिका के मिजाज की बात है कि दोस्ती जल्दी कर भी देते हैं और जल्दी भुला भी देते हैं, मगर वो जो एक मुस्तकिल ताल्लुक की लहरें हैं वो उनके दिलों से निकलती महसूस नहीं हुई। जबकि कनाडा में गैर मामूली इंसानी जज्बे के साथ उनके दिलों से लहरें निकलती हैं जो दिलों को गर्माती हैं, और उनको मैंने इस पहलू से मुबारकबाद भी दी है कि आपने जो बातें भी, जब नेकी की बातें जब भी सुनी हैं, बड़ी गैर मामूली संजीदगी के साथ उन पर लब्बैक कहा है। और बाकी ममालिक में कम हैं जिनके मुतल्लिक मैं कह सकता हूँ उनको नेक मशवरे दिए जाएं तो वो वाकयातन संजीदगी से उनका जवाब दें। इस पहलू से उनको एक फौकियत हासिल है कि उनके सियासतदानों में इंकिसार पाया जाता है, कोई रौनक मैंने नहीं देखी। जब भी, और बारहा ऐसा हुआ है, जब भी उनको कोई ऐसा मशवरा दिया जो उनके लिए और इंसानियत के लिए मुफीद है, तो बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हाँ, हम इस बात को नोट कर रहे हैं और इस पर अमल करेंगे। और बाद में उनकी तकारीर से और जो प्रोग्राम उन्होंने अपनी कौम के लिए तजवीज़ किए उनसे साफ खुल जाता था कि महज मुंह की बातें नहीं थीं, दिल के जज्बे से वो ऐसा कहा करते थे। यहाँ तक कि उनमें मरकजी वजरा भी ऐसे हैं और एक सूबा के वजीर आजम बने जो उनका भी यही हाल है। जब मेरा खिताब ख़त्म हुआ तो मुझे उठकर उन्होंने कहा कि देखें आपने जो बातें कही हैं मेरे दिल पर नक्श हो गई हैं और आइंदा हम इस पर अमल करेंगे। और वाकयातन फिर उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया उसमें वो वजीर आला थे, वजीर आजम इन सूबे के थे, उन्होंने उसी तरह उस वादे को पूरा किया। और इसलिए कि उनके हक में था, इसलिए कि वो समझते हैं कि अच्छी बात जहाँ से मिले उसे कबूल करना इंसान की बड़ाई के खिलाफ नहीं बल्कि बड़ाई की निशानी है। और यही वो मज़मून है जिसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को सिखाया कि अल-हिकमत ज़ौलतुल मोमिन है, हिकमत की बात तो मोमिन की गुमशुदा ऊँटनी है, जहाँ भी मिले अपना समझ के ले ले, ये ओपरापन महसूस ना करे कि गैर से मैंने हिकमत सीखी तो गोया मैं जलील हो जाऊँगा। जिसकी अपनी चीज़ गुमी हुई मिले वो उसको हासिल करने से जलील तो नहीं हुआ करता। तो हिकमत तमाम बनी नौ इंसान में सांझी है और खसूसियत से मोमिनों का खासा है कि वो पुरहिकमत बातें करें और पुरहिकमत बातों को अपनाएं। बस इस हवाले से मेरी अमेरिका को ये नसीहत है कि अगर अल्लाह ताला के फजल से बहुत तरक्की है लेकिन अब ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि जब पहले अमेरिका से आप लोगों के ज़ाती रवाबित संजीदगी से और इखलास के साथ आगे बढ़ें यहाँ तक कि वो आपका असर कबूल करने लगें। और जब तक हम अमेरिका पर असरानंदाज नहीं होते तमाम बनी नौ इंसान पर असरानंदाज होना बहुत मुश्किल काम है। इस दफ़ा जब कैनेडा को मैंने बात बातें समझाई तो उनको यही कहा था कि आप अगर इन बातों पर अमल करें तो तमाम दुनिया की सियासत के लिए एक अच्छी मिसाल कायम होगी, मगर दूसरे सियासतदान ममालिक ज़रूरी नहीं है कि कैनेडा की पैरवी करें, लेकिन अमेरिका इस पहलू से एक फौकियत रखता है और भारी इम्कान है कि जो लोग अमेरिका से मुतासर हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें अमेरिका से मुतासर हैं अगर यहाँ के सियासतदान समझ जाएं तो वो भी अपने अंदाज तब्दील कर लेंगे। वो तो ऐसे आशिक हैं अमेरिका के कि इसकी हर बुराई को कबूल करने पर भी तैयार है, अगर खूबियाँ भी पैदा हो जाएं तो क्यों उन खूबियों को नहीं अपनाएंगे। अमेरिका की जलसे की हाजिरी अल्लाह ताला के फजल से हैरत अंगेज तौर पर खुशकुन साबित हुई। अमीर साहब ने मुझे बताया कि गुज़श्ता साल इज्तिमा पे तकरीबन 3,000 मेहमान तशरीफ लाए थे, यानी कुल हाजिरी 3,000 थी बाहर से आने वालों समेत। और इस साल इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि मेरी आमद मुतवक्के है इसलिए 1,500 का इजाफा कर दिया जाए और 4,500 के अंदाजे पर इन्होंने खानों के सामान खरीदे और तैयारियां की। और खाना खाने वालों की आखिरी हाजिरी 7,000 तक पहुंच चुकी थी खुदा के फजल से। और ये जो हाजिरी है ये कती और यकीनी है, इसमें इजाफा हो सकता है कमी नहीं, क्योंकि वो लंगर जहां मिने तुले सारन तकसीम होते हैं और रोटियां दी जाती हैं वहाँ बाज़ दफ़ा एक की बजाय 2 या 3 हाजिरियाँ भी लिखवा दी जाती हैं। बाज़ हमारे ज़मींदार बहुत खाने वाले भी हैं, वो 5-5, 6-6 हाजिरियाँ लिखवा कर अपना पेट भरते थे, ये गुना नहीं था। वो कहते थे तुम्हारी 2 रोटियों हमारा क्या बनेगा, इसलिए 7 आदमी का खाना दो तो फिर हमारा पेट भरेगा, तो हम दे देते थे मगर तादाद बढ़ जाया करती थी। और हमेशा ये खतरा रहता था कि जो तादाद लंगर की पर्ची की है असल मेहमानों की उससे कम होगी लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा सवाल नहीं, यहाँ बरक्स सूरत होती है, बाज़ दफ़ा मेहमान यहाँ खाना नहीं खाते, उनके अपने इंतज़ाम होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो इस पहलू से बहुत ही खुशकुन हाजिरी थी, 7,000 की हाजिरी अमेरिका के लिए एक नया संग मील है। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसे और आगे बढ़ाने की तौफीक बख्शे। और आगे बढ़ाने में याद रखें तबलीग के ज़रिए आगे बढ़ें, पैदाइश के ज़रिए तो आप बढ़ते ही हैं, जो नहीं बढ़ते उनको मैं मुलाकात के दौरान समझा देता हूँ। और हवाला देता हूँ ऐसा जिसका इनकार कर नहीं सकते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम शादी किया करो तो वलूदन वदूदन औरतों से शादी किया करो, ऐसी औरतें जो वदूद भी हों यानी बहुत प्यार करने वाली हों, और वलूद हों जो बच्चे भी बहुत दें, ताकि मेरी उम्मत बढ़े। ये बहुत ही एक प्यारी तवक्को है। बस जब मैं कुछ बेचैनी के आसार देखता हूँ तो ये हवाला दे देता हूँ, और अल्लाह के फजल से बाकी काम ये हवाला कर देता है। तो बढ़ें बेशक, और वो तो बढ़ना ही है इंशाल्लाह, यानी औलाद के ज़रिए, मगर जो तबलीग के ज़रिए बढ़ना है वो आज वक्त की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत तबलीग के ज़रिए बढ़ना है। और इस साल खुदा के फजल से अमरीका में इस पहलू से तरक्की के आसार दिखाई दिए हैं, और बहुत से नए चेहरे जो अफ्रीकन अमरीकनों के भी थे और सफ़ेद अमरीकनों के भी, वो सारे खुदा के फजल से अहमदियत के रंग में रंगीन एक हो चुके थे। उनमें कोई तफरीक बाकी नहीं रही थी, बहुत ही मोहब्बत व खलूस के साथ एक दूसरों के हाथों में हाथ डाले फिरते थे। तो ये एक तमाम आलम को एक बनाने का नुस्खा है जो अहमदियत के सवा और कहीं नसीब नहीं है। अल्लाह करे इस पहलू से आप अमेरिका को भी एक कौम बना दें, और अमेरिका के हवाले से हम कुल आलम को एक कौम बनाने में कामयाब हो सकें। अब मैं उस मज़मून की तरफ आता हूँ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में कुरान करीम ने हमारे सामने रखा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउन युहिब्बुकुम अल्लाह। तो कह दे कि अगर तुम वाकईतन अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, यानी आप मुखातब हो के खुदा मुखातब होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से, और फरमाता है कि तू कह दे बनी नौ इंसान से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार हो, वाकईतन मोहब्बत करते हो, तो फिर मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वरना तुम्हारी मोहब्बत रायगां जाएगी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह की मोहब्बत को समझना हमारे लिए ज़रूरी भी है, और इस मोहब्बत को नहायत ही आसान और लुत्फ बना देने वाला है। इसमें फत्तबिउनी का जो चैलेंज है वो महज इसलिए नहीं कि जैसे फ़ख्र में कहा जाता है कि मेरी पैरवी करके दिखाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज है, खुदा ताला आपको खिताब करते हुए हमेशा उस मिजाज को भी मलहूज रखता है। आपके मिजाज में कोई तफाखुर नहीं था। जब भी आप उन इनामात का जिक्र फरमाते थे जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल फरमाए, तो साथ साथ फरमाते थे वला फ़ख्रा वला फ़ख्रा वला फ़ख्रा वला फ़ख्रा। एक मौके पर बार बार उन अजीम मनाकब का जिक्र किया जिनमें आप तन्हा थे, कुल आलम में सवाए आपके और किसी को वो फजीलत नहीं मिली, लेकिन साथ साथ फरमाते जाते थे वला फ़ख्र, मुझे इस पर फ़ख्र कोई नहीं है। फ़ख्र इसलिए नहीं, काबिल फ़ख्र बात पर अगर कहा जाए फ़ख्र नहीं है, तो मुराद ये है कि मैं समझता हूँ कि मैंने कमाई नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है। ये भी एक गैर मामूली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ इंकसारी है जो आपको खुदा से और भी ज़्यादा करीब कर देता है, और आपकी मोहब्बत के इजहार का एक ज़रिया है। हम दुनिया के तजर्बे में ये देखते हैं कि बसा औक़ात शेरी ज़ौक से इंसान पहचाना जाता है। अगर किसी से प्यार हो तो जिस अंदाज का प्यार हो उसी अंदाज के शेर पसंद आते हैं, और अगर एक इंसान खुश्क मिजाज का है तो उसे खुश्क मिजाज के ग्रामर के लिहाज से आला दर्जे के बुने हुए शेर अच्छे लगते हैं। गर्दी के हर शख्स का मिजाज उसके शेरों के इंतखाब पर असरअंदाज होता है। इसी पहलू से एक शायर ने कहा है कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मेरा हाल तो नहीं खुलना था, मगर मेरा शेरों का इंतखाब ऐसा था जिसने दिल की बात कह दी। तो आइए अब मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का एक शेर आपको सुनाता हूँ, ताकि आपके दिल का मामला भी हम पर खुले, क्योंकि ये मामला खुले बगैर हमारे दिलों को हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीद शायर के मुतल्लिक ये फरमाया कि बहुत से शायर बहुत कुछ कहते हैं, मगर जो बात लबीद ने कह दी वैसी और कोई शायर वैसी बात नहीं कह सका। लबीद के शेरों को ऐसा खराज तहसीन, बल्कि दुनिया के किसी शायर के शेरों को ऐसा खराज तहसीन कभी नसीब नहीं हुआ जैसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीद को दिया। फरमाते हैं वो शेर क्या है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बातिल, सुनो हर चीज़ खुदा के सिवा बातिल है। अब ये शेर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इसलिए जागज़ीन हुआ है कि दिल की बात थी, जो बात दिल में हो और कोई दूसरा कह दे तो ऐसे दिल में जाके डूबती और टिक जाती है कि अपनी महसूस होती है। जैसा कि गालिब कहता है, जो लज़्ज़त लज़्ज़त के जो उसने कहा, हाँ तकरीर में वो के शेर है, वो लज़्ज़त के जो उसने कहा मैंने ये जाना, हाँ ठीक, देखना तकरीर की लज़्ज़त कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मगर इस मामले में लबीद का शेर जो आ हजूर के दिल पर असरअंदाज हुआ है ये इसलिए नहीं कि जो उसने कहा वो भी दिल में है, बल्कि जो आपके दिल में था वो उसकी ज़ुबान से जारी हुआ है और मामला बरक्स है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए ये शेर पसंद आया। और याद रखें कि मोहब्बत इलाही में जो नमूने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए हैं उनका एक नुमाया फ़र्क दुनिया की मोहब्बत से दिखाई देता है। दुनिया में भी जिनसी मोहब्बतें भी होती हैं और गैर जिनसी मोहब्बतें भी। जिनसी मोहब्बत का यह खासा है कि जिससे मोहब्बत हो अगर कोई और उससे मोहब्बत करे तो उससे नफरत हो जाती है। यह अजीब किस्सा है, जितना आप किसी को चाहें उतना ही किसी और की मोहब्बत दखलअंदाज होती है और आपको बुरी लगती है। आप चाहते हैं कि बस आप तन्हा ही चाहें, मगर रूहानी मोहब्बत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप जिसे चाहते हैं जितना चाहें, दिल चाहता है सब भी उसे चाहें, हर शख्स उसके इश्क में दीवाना हो जाए। ये वो नमूना है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया और हैरत अंगेज़ तरीक पर दिलों को छेड़ा कि हर दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुबतला हो जाए और वैसे ही मुबतला हो जाए जैसे आप हैं। बस ये वो मिजाज है जिसे इस आयत करीमा ने खोल कर बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ मोहम्मद, तेरे दिल की बात यह है, तू बताना चाहता है कि अगर तू मोहब्बत करना चाहते हो तो मुझसे सीखो, और मुझसे सीखोगे तो तुम्हारी मोहब्बत आसान हो जाएगी, मुझसे सीखोगे तो तुम्हारी मोहब्बत को फल लगने लगेंगे। इसलिए जो बेइख्तियार गहरी तमन्ना है कि सब अल्लाह ताला को वैसा चाहें जैसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, ये उसी जज्बे का इजहार है जिसे खुदा ताला ने अपने अल्फाज में यूं बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ मोहब्बत के दावेदारों, तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है, आओ और मेरे पीछे चलो, मोहब्बत की सारी राहें मैं तुम पर आसान कर दूंगा। मोहब्बत एक बोझ नहीं होगी बल्कि एक ऐसा लुत्फ पुरलुत्फ जज्बा हो जाएगा जो एक गैर मामूली ताकत और जल्द के साथ तुम्हें खींचेगा और तुम्हारा हर कदम मोहब्बत की राह में आसान से उठेगा। ये वो मोहब्बत की कैफियत है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब थी और आप ही ने हमें सिखाई और आप ही से हम सीखेंगे, क्योंकि इससे बढ़कर खुदा की मोहब्बत सिखाने वाला और कोई नहीं। और बहुत ही बारीक राज आप मोहब्बत के मुतालिक बयान फरमाया करते थे, जिनमें हमेशा डूबकर बहुत ही गहरा फलसफा, मोहब्बत का गहरा फलसफा मालूम होता था। और बज़ाहिर वो जवाब एक अलग सा जवाब है, लेकिन जब आप गौर करें तो हैरत अंगेज़ आरिफाना कलाम है। एक शख्स ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ऐसा काम बताएं कि मैं उसे करूं तो अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब ये सवाल वही है जो उस आयत से ताल्लुक में है जो मैंने आपके सामने रखी है। वहाँ यही तो मज़मून है कि दुनिया को बता दो कि अगर मोहब्बत करनी है तो फिर मेरे पीछे चलो, तब उस मोहब्बत को फल लगेगा, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो उसने बयान ही सवाल किया कि मुझे ऐसा काम बताइए कि जब मैं उसे करूं तो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब आयत करीमा के मज़मून के मुताबिक जवाब होना चाहिए, इसलिए इस जवाब को उस आयत के हवाले के बगैर समझा जा ही नहीं सकता। ये कोई खुश्क जवाब नहीं है, बल्कि अपने दिल की वारदात को आपने उनके सबके सामने खोल दिया कि अल्लाह ताला ने तो यही तरीका सिखाया है कि जैसे मैं करता हूँ तुम भी वैसे ही करो तो खुदा तुमसे ज़रूर मोहब्बत करेगा। तो फरमाया दुनिया से बेरगबत और बेनियाज हो जाओ, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करने लगेगा। दुनिया से बेरगबत और बेनियाज हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और जहाँ तक बनी नौ इंसान की मोहब्बत का ताल्लुक है, फरमाया जो कुछ लोगों के पास है उसकी ख्वाहिश छोड़ दो, लोग तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। अब ये दो बड़ी गहरी हिकमत की बात हैं, ताल्लुक बिल्ला और ताल्लुक बिन्नास, यानी हम जिन लोगों से ताल्लुक बढ़ाना हो तो ये तरीक है और खुदा से ताल्लुक बढ़ाना हो तो वो तरीक है। खुदा के ताल्लुक में ये नहीं फरमाया कि जो खुदा का है उसे मांगना छोड़ दो, उसकी हिर्स तरक कर दो, बल्कि वहाँ कुछ और बात फरमाई है जिसकी तरफ मैं वापस आता हूँ। बनी नौ इंसान के पास जो कुछ है उसकी हिर्स छोड़ दो, और ये खुदा और बनी नौ इंसान के रुझानात के अंदर जो नुमाया फ़र्क है ये उसको जाहिर करने वाली बात है। अगर आपकी नज़र किसी की दौलत, किसी के महल, किसी के मकान, किसी की औरत पर लग जाए तो वो हमेशा आपके खिलाफ नफ़रत के जज्बात पैदा करेगी, क्योंकि इंसान फितरतन कंजूस है और ये पसंद नहीं करता कि उसकी चीज़ पर किसी और की नज़र लग जाए। बार दफ़ा नौकरियां हैं, नौकरियों पर जब लोगों की नज़र लग जाती है तो कई किस्म की शरारतें और फसाद करते हैं, और उसके नतीजे में फिर एक जवाबी नफरत पैदा होती है। हर शख्स जो अपने आप को महफूज, गैर महफूज समझता है, हर ऐसे शख्स से जो उसकी चीज़ों को चाहता है, उसकी चीज़ों को हासिल करना चाहता है और हिर्स की निगाह से उसकी मिल्कियत को देखता है, उसको तबन उससे एक ख़तरा महसूस होता है और ख़तरे के मुताबिक एक किस्म की बेगानगी पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह फरमाता है कि बनी नौ इंसान में तो ये ताकत नहीं है कि तुम उनकी चीज़ें चाहो और वो फिर भी तुमसे प्यार करें, इसलिए उनकी चीज़ों को देखना ही छोड़ दो और फिर बनी नौ इंसान तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मगर सवाल ये है कि इसका पहले जवाब से ताल्लुक क्या है? अगर आप और गौर करेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि एक ही बात के दो पहलू बयान हुए हैं। अगर आप बनी नौ इंसान की चीज़ों से, बनी नौ इंसान के ममलूकात से जिनके वो मालिक हैं उनसे गैर ममूली हिर्स का ताल्लुक तोड़ लेते हैं तो सारी बनी नौ, सारी दुनिया से हिर्स का ताल्लुक तोड़ लेते हैं। और यही पहला जवाब था कि तुम दुनिया से हिर्स का ताल्लुक तोड़ लो, बेनियाज हो जाओ तो खुदा तुम्हारा हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन वो ताल्लुक तोड़ना जो है उसकी तरकीब ये ऐसी बताई कि इंसान भी मोहब्बत करने लगे और खुदा भी मोहब्बत करने लगे। सवाल छोटा सा था लेकिन जवाब बहुत अजीम है। सवाल में एक दायरे की मोहब्बत पूछी गई थी, जवाब में हर दायरे की मोहब्बत शामिल फरमा दी गई, और बनी नौ इंसान से ताल्लुक तोड़ने का नहीं कहा। یہ ایک اور حکمت کی بات ہمیں سمجھائی گئی. یہ نہیں فرمایا کہ بنی نوع انسان سے تعلق توڑ لو تو خدا تمہارا ہو جائے گا. جو بنی نوع انسان سے تعلق توڑتے ہیں خدا ان کا نہیں ہوا کرتا. ہاں لوگوں کی ملکیتوں سے وہ نعمتیں جو خدا نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے حرص کا تعلق کاٹ لو, یہ بے نیازی ہے. بس بے نیازی ایک عظیم دولت ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بے نیازی سے زیادہ متمول کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. اور بے نیازی میں غیر کی چیز کو غیر کا سمجھنا اور اس پہ جلن محسوس نہ کرنا, یہ سب سے پہلی سچی علامت ہے کہ آپ کو واقعتاً اس کی حرص نہیں ہے. اب جتنے بھی دنیا میں شریکیں ہیں اور شریکوں کے مقابلوں کی مصیبتیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں, قوموں کو قوموں سے ایک قسم کی جلن پیدا ہو جاتی ہے, حسد پیدا ہو جاتا ہے, انسانوں کو انسانوں سے, عورتوں کو عورتوں سے, مردوں کو مردوں سے, بچوں کو آپس میں جلن و حسد. اور اس سب کی بنیادی وجہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی چیزوں کو حرص سے دیکھتے ہیں وہ تبھی حرص سے دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اور جتنی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہے. یہ جذبہ حسد, یہ حسد کا جذبہ پیدا کرنے والا ایک خیال ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اگر ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے اور میرا بھائی اس کو پسند کرتا ہے, اس پہ غصہ نہیں کرتا, تو وہ اسے ضرور محبت کرے گا. اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. اگر ایک انسان کسی بھائی کی دولت پر, اس کے اچھے مکان پر, اس کے اچھے مویشیوں پر, اس کے اچھے فن پر, اس کے ذوق و ادب پر خوش ہوتا ہے تو ثابت ہوگا کہ اس کو اس سے کوئی حسد نہیں ہے, اور یہ اس حدیث کا مضمون اس پر پوری طرح صادق آئے گا کہ تم تمام انسانوں کی مملوکات سے جو کچھ خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے ان سے اس حد تک بے نیاز ہو کہ ان کو جو خدا نے نعمتیں بخشی ہیں اس سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے کوئی, بلکہ خوشی نصیب ہو. بس اپنے جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. ایک بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی, سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. ایک عزیز نے کوئی بڑی نوکری حاصل کر لی, سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. کسی کو کوئی اعزاز مل جائے تو سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. بلکہ دور والے جو پہلے زیادہ تعلق نہیں بھی رکھتے تھے مگر دل میں تھا, وہ ایسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. کچھ جھوٹے بھی چلے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جو سچی محبت ہے اس میں اپنے پیارے کو جو ملے گا وہ اپنے آپ کو ملتا ہے. اور اس پہلو سے ایک انسان صرف بے نیاز ہی نہیں ہوتا بلکہ متمول ہو جاتا ہے. وہ شخص جو سب کی خوشیوں میں شریک ہے اس کی عجیب زندگی ہے. جہاں اسے خوشی کی خبر ملتی ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ جو ہر ایک کے ماحصل کو ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے, ہر بات پہ جلتا ہے, ساری زندگی وہ آگ میں جلتا رہتا ہے. بس وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے لیے آگ جلا کے رکھتے ہیں اور اس میں جلتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں جنت اور تمانیت کی خوشخبری دی جائے. یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بنانی ہے, اپنی جنت بنانی ہے. اور اس پہلو سے یہ نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہت گہرا ہے, اور آپ کی قلبی کیفیات کا مظہر ہے. کیونکہ جواب اس آیت کا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس نے پوچھا تو آیت کا حوالہ تو نہیں دیا, پوچھا یہی تھا کہ بتائیں اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے, میں تو کرتا ہوں. تو اپنے دل کی کیفیات ہیں جو کھولی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر کامیابی پہ خوش ہوتے تھے, اور اپنے غلاموں کی کسی کامیابی پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلبی احساس تھا اس میں تمام صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا उसे साथ में एक लज्जत का जज्बा पैदा कर देता था। देखो कितनी अजीम कामयाबी है। पहला तरीक वो है जिस पे हर वो शख्स जो आपके करीब नहीं है, जब उसको कुछ मिलता है आपके लिए एक अजाब बन जाता है, उसका मिलना आपके लिए अजाब बन जाता है। ये दूसरी सूरत में जो कुछ आपको अजीजों अकरबा को या जानने वालों को मिलता है आपके लिए एक लज्जत का सामान पैदा कर देता है। तो ये वो चीज़ है जो इस दुनिया में एक जन्नत बना देती है और जिंदगी को कितना आसान कर देती है। अब इसी बात को पहले सवाल के पहले जवाब के पहले हिस्से के ताल्लुक से हम मजीद देखते हैं। फरमाया कि अगर तुम दुनिया से बेनियाज हो जाओ तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। सवाल यह है कि दुनिया से किस दुनिया से बेनियाज हो जाओ? अल्लाह की दुनिया है, उससे तो बेनियाजी मुमकिन नहीं है। दुनिया से बेनियाजी का मतलब है गैरुल्लाह से बेनियाजी, वरना जो अल्लाह की चीज़ है उससे तो इंसान को प्यार होता है अगर अल्लाह से प्यार है। ये मज़मून आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह खूब खोल कर बयान फरमाया है। बस बेनियाजी से मुराद दो हैं, एक ये कि दुनिया अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है और उस तकलीफ को तुम खुदा की खातिर बर्दाश्त करते हो और परवाह नहीं करते कि दुनिया ने तुम्हें क्यों क्या कहा है और तुमसे कैसा सलूक किया है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह तुमसे ज़रूर मोहब्बत करेगा। और ये जो मज़मून है गहरा इंसानी फितरत में माजू रसा बसा मज़मून है। आप देखें वो आपके बच्चे भी बाद ऐसे हैं जो खुद जवाब देते हैं और दूसरे की बातों पर बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खामोश हो जाते हैं और सब्र से बर्दाश्त कर जाते हैं। माँ बाप की नज़र उनके चेहरों पर रहती है और उनकी तकलीफ को ज़्यादा महसूस करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बस दुनिया से बेनियाजी अगर इन मानों में है कि दुनिया खुदा की खातिर तकलीफें पहुंचाती है और आप खुदा की खातिर खामोश हो जाते हैं और सब्र करते हैं, तो ये वो बेनियाजी है जो लाजिमन अल्लाह की मोहब्बत को खींचेगी। दूसरे बेनियाजी अल्लाह के ताल्लुक के हवाले से है। अगर आपको दुनिया से ऐसा प्यार है कि खुदा के प्यार के रस्ते में हायल हो जाता है तो इसे दुनिया से बेनियाजी नहीं कहा जा सकता। दुनिया से बेनियाजी अल्लाह के ताल्लुक में सिर्फ ये माने रखती है कि जहाँ भी दुनिया खुदा से टकराती है और खुदा के ताल्लुक और दुनिया के ताल्लुक के दरमियान एक फैसला करने का वक्त आता है, हर ऐसे मौके पर दुनिया से बेनियाज हो जाओ। मगर आपने ये नहीं फरमाया हर ऐसे मौके पर बेनियाज हो जाओ, आप फरमाते हैं दुनिया से बेनियाज हो जाओ। ये इसलिए है कि हर ऐसे मौके पर बेनियाजी है जो कामयाबी से इस इम्तिहान से गुजरता है। बेनियाजी एक दायमी कैफियत का नाम है। ये मतलब नहीं कि उस मौके पर सोचकर ये फैसला करो कि अल्लाह को लेना है और दुनिया को छोड़ना है। आपने एक दायमी कैफियत का जिक्र फरमाया है। एक इंसान के दिल में हमेशा हमेशा के लिए ये जज्बा मुर्तसिम हो जाए, उस पर लिखा जाए, छप जाए कि खुदा के सिवा मुझे किसी चीज़ से कोई प्यार नहीं होगा अगर वो खुदा से टकराती है। लेकिन अल्लाह के हवाले से गैरों से प्यार करना ये फितरत के मुखिलाफ नहीं है बल्कि फितरत के ऐन मुताबिक है। बस इस दूसरे पहलू की तरफ भी मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रोशनी डालूंगा, क्योंकि गुज़श्ता खिताब के बाद मुझे ऐसे पैगामात मिले हैं जिसमें कुछ लोग बेचारे परेशान से होकर रह गए हैं। कहते हैं आपने तो कहा है और कुरान और हदीस के हवाले से कहा है कि खुदा की मोहब्बत और सब कुछ बाकी गैर फानी झूठ है, सब कुसा है, उसके सिवा कुछ भी बाकी न रहे, तो हमें तो अपने ईमानों पर शुबा पड़ गया है। हम तो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपने प्यारों से भी मोहब्बत करते हैं, बीवियाँ खामदों से मोहब्बत करती हैं, खामद बीवियों से करते हैं, हम कहाँ जाएंगे अगर ये सब शिरकी की निशानी है? अगर इन मोहब्बतों के नतीजे में हम खुदा की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे तो हमें समझाएं कि फिर क्या इलाज है, हम कैसे उस मकसद को पालें जो आपने अल्लाह की मोहब्बत के हवाले में बयान फरमाया। तो मैं फिर इस मजमून को की तरफ लौटूंगा, मगर सरे दस्त मैं आपको यह बताना चाहता एक हदीस आपके सामने रखता हूं, जो एक बहुत ही गहरा असर करने वाली हदीस है, दिल के ऊपर एक गैर मामूली दिल पे काबिज हो जाती है, और लेकिन ये एक ऐसी हदीस है जिसे समझना आसान भी नहीं है, कई गलतफहमियां भी हो सकती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जंगी कैदी लाए गए, जिनमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। इन औरतों में से एक औरत जिस किसी बच्चे को देखती उसको दूध पिलाना शुरू कर देती, उसे मोहब्बत का इजहार करती, और लोग समझते थे कि दीवानी हो गई है। इस कैफियत को जब देखा तो हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हाँ उसका किस्सा यह था कि उसका बच्चा खोया गया था, और चूंकि बच्चे से प्यार था इसलिए उसके हवाले से हर बच्चे से प्यार हो गया, हर बच्चा अपना दिखाई देने लगा। और यही मजमून है जो एक अरब शायर ने इस हवाले से बयान किया है कि मेरा भाई जिस मकाम पर दफन है वो अगर चालक मकाम है, लेकिन मुझे तो जहां भी कोई कब्रिस्तान दिखाई देता है उसका नाम वही दिखा लगता है जो मेरे भाई के मदफन की जगह का नाम है। मैं हर कब्र पर उसी तरह गिरियाउजारी करता हूं जैसे अपने भाई की कब्र पर गिरियाउजारी करता था, क्योंकि याद रखो कि एक गम दूसरे गम को उभार दिया करता है, एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत को छेड़ देती है। बस यही कैफियत इस औरत की थी कि जिस बच्चे को देखती उसे सीने से लगा लेती, उसे दूध पिलाती, उसे प्यार का इजहार करती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को दिखाकर सहाबा से पूछा कि बताओ क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हरगिज नहीं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर इस औरत के अपने बच्चे पर रहम करने से ज्यादा रहम करने वाला है, वो कैसे बंदों को आग में फेंक देगा? अब ये जो मजमून है ये बहुत ही लतीफ है, बहुत ही दिल पर असर पैदा करने वाला है, मगर इसकी हिकमत समझनी जरूरी है, वरना यूं मालूम होगा जैसे कुरान करीम के उन तमाम वईद को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत करार दे रहे हैं, जहां जहन्नम की बातें हैं और बड़े यकीन और तहदी के साथ फरमाया जा रहा है कि लाजमन ये बात होकर रहेगी, खुदा की तरफ से एक हक्कन वादा है जो टल नहीं सकता, लाजिमन जहन्नम को बद लोगों से भर दिया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये हदीस उसके मुकाबले पर क्या माने रखती है? और हदीस भी एक आम किताब की नहीं बल्कि बुखारी किताबुल अदब से ली गई है, जो एक मुस्तनद किताबों में से एक अहम मुस्तनद किताब है। तो असल बात यह है कि यहाँ इस मजमून की चाबी लफ्ज बंदे में है, वो लोग वो बच्चे जो माओं के बच्चे नहीं बन के रहते, जो माओं के बच्चे होते हुए भी गैरों के हो जाते हैं, बसा औकात माएँ उनको बददुआएं भी दे देती हैं। और खुद मेरे सामने एक ऐसा वाकया हुआ कि एक औरत ने बिस्तर मर्ग पर अपने बच्चे को बददुआ दी, सिर्फ इसलिए कि उसके खुदा से ताल्लुक टूट गया था, और चूंकि इस औरत का खुदा से गहरा ताल्लुक था इसलिए उसने बददुआ दी और मैं हैरान रह गया। लेकिन उस वक्त मैं समझा कि खुदा का इश्क इस पर इतना गालिब है कि अपने बेटे को बददुआ दे रही है क्योंकि उसको खुदा से ताल्लुक टूट गया था, उसका खुदा से ताल्लुक टूट गया था। पर बस ये चीज हकीकतन मुमकिन है और इंसानी फितरत में भी इसके नज़ारे दिखाई देते हैं। बस अल्लाह ताला ने अपने बंदों का बयान करते हुए शैतान के साथ एक गुफ्तगू को एक तमसील के तौर पर पेश फरमाया है। जब शैतान ने यह कहा कि तू ये जो मखलूकात हैं आदम की औलाद इन पर मुझे अपना असर डालने के लिए क़यामत तक की छुट्टी दे दे और फिर देख कि कितने हैं जो तेरे साथ रहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया छुट्टी है, तुम अपने घोड़े भी चढ़ा लो इन पर, अपने प्यादे भी ले आओ, इनके आगे से पीछे से दाएं और बाएं से इन पर हमले करो, और जो कुछ बन सकता है बनाओ और इन बंदों को गुमराह करने की कोशिश करो, मगर याद रखो जो मेरे बंदे हैं उन पर तुम्हें कोई तुझे कोई दस्तरस नहीं हो, जो तेरे तेरे हैं तो उनको ले जा, वो तो मेरे नहीं है। और फिर क़यामत के दिन मैं तुझे भी और उनको जिन्होंने तेरा साथ दिया था, जिन्होंने मुझसे बंदगी के ताल्लुक तोड़ लिए थे, आग में फेंकूंगा। तो ये जो हदीस है ये कुरान करीम की इस आयत के हवाले से हल होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि तुम अगर खुदा का बंदा बनना सीख जाओ, अगर उसके बंदे हो जाओ और इबादुर रहमान वाली सिफात तेरे अंदर पैदा करो, तो खुदा की कसम खुदा तुम्हें कभी आग में नहीं डाले, नामुमकिन है कि तुम्हें आग छू जाए। और इसी मजमून को हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने बयान फरमाया है कि आग है और आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए जुल अजायब से प्यार। और इस दुनिया में भी इस मजमून को इतलाक फरमाया है, फरमाया बड़े बड़े इतला आएंगे, दुनिया में खौफनाक जंगें होंगी, बड़ी बड़ी हलाकतें हैं जो तुम्हारे सामने आने मुंह फाड़े खड़ी हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आग तो है मगर जो खुदाए जुल अजायब से मोहब्बत करते हैं उन पर आग हराम कर दी जाएगी। बस इस दुनिया की जहन्नम से बचने का भी वही तरीक़ है जो इस हदीस में बयान हुआ, और उस दुनिया में जो बाद में आने वाली है उसकी जहन्नम से बचने का भी यही तरीक है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। और बंदा बने बगैर ये तवक्को रखना कि खुदा का रहम गालिब है, ये हिमाकत है, क्योंकि कुरान करीम ने इस मजमून को खूब खोल कर अलग अलग बयान फरमा दिया, इसमें कोई जज्बातियत नहीं, गहरे हकायक हैं जो कुरान और अहादीस हमारे सामने रखते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार मोहब्बत के मुतालिक कैसे आप खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार और जलाल के एहसास से लर्जा हो जाया करते थे। एक हदीस है जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते हुए आयत पढ़ी, والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، کہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ لپیٹے جائیں گے، پاک ہے وہ ان باتوں سے جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرماتا ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑی طاقتوں والا اور نقصان کی تلافی کرنے والا ہوں، میرے لیے ہی بڑائی ہے، میں بادشاہوں میں ایک بلند شان بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں میں سب سے بڑھ کر، اور میرے لیے ہی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ذات کی مجد اور بزرگی بیان کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مجد اور بزرگی کے اس بیان کو اس طرح دہرانے لگے اور ایسے وجد میں آئے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ سارا ممبر لرزنے لگا، اور اس قوت اور شان کے ساتھ، اس گہرے جذبہ عشق کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے، اور یہ فکر بار بار دہرانے لگے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ممبر اس لرزش سے ٹوٹ کر کہیں آپ کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو بنائے نہیں بنا کرتی، ایک بے اختیار کیفیت ہے۔ بس اس پہلو سے اگر ہم اپنی محبت کو جانچنا چاہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے ذکر پر ہمارے دل پر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے بدن اور روئے روئے میں خدا کا پیار دوڑنے لگتا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ ذکر محض ایک ذکر ہے جو زبان پر جاری ہو کر दूसरे कानों तक तो पहुंचता है मगर दिल तक नहीं पहुंचता, तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। इसका जो चाहे नाम रख लें, ये मोहब्बत नहीं। खुदा का नाम तो इतना प्यारा नाम है कि जब वो मोहब्बत करने वाले के दिल पर पड़ता है तो उससे बड़ी म्यूजिक और कोई नहीं, उससे आला दर्जे का पुरसरूर नगमा मुमकिन नहीं है। जिक्र इलाही अपनी ज़ात में एक ऐसा नगमा है जिसकी कोई मिसाल दुनिया के नगमों में नहीं मिलती, और यही वजह है कि कुरान करीम इस जिक्र इलाही का के मुतल्लिक फरमाता है तख्शयरु मिन्हुल जुलूद। ये जिक्र तो एक ऐसी शान रखता है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के बदन पर, उनकी जिल्दों पर झुरझुरियां तारी हो जाती हैं। और वाकईतन जब किसी से मोहब्बत का जज्बा भड़के तो कई दफ़ा इंसान कांप जाता है और एक झुरझुरी सी तारी हो जाती है। बस ये वो मोहब्बत का अंदाज है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। इस मोहब्बत के बगैर हमारी जिंदगियां कामयाब नहीं हो सकती। हम हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत के दावे तो करेंगे मगर मोहब्बत की हकीकत को नहीं पा सकेंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मोहब्बत के इजहार को जिस तरह जिस तरीक़ से बयान फरमाते हैं उसकी कोई मिसाल इस ज़माने में हमें दिखाई नहीं देती। दूर समीन के हवाले से जो मैंने मज़मून शुरू किया था, इंशाअल्लाह मैं आइंदा किसी वक्त मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज हमें बाहर भी जाना है और वक्त थोड़ा रह गया है। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले ही से एक और नज़म से मैं ये चंद शेर आपके सामने रखता हूँ। तेरे कूचे में किन राहों से आऊँ, वो खिदमत क्या है जिससे तुझको पाऊँ। अल्लाह ताला से पूछते हैं कि बता मैं किन रस्तों से तेरे कूचे तक आऊँ, कौन सी खिदमत है जो मकबूल होगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से भी यही सवाल उठते रहे जिनके जवाब कुरान में नाज़िल होते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, आपने अर्ज़ की रब्बना अरिना मनासिकना, ऐ अल्लाह हम चाहते हैं कि तेरी राह में वो कुर्बानियाँ पेश करें जो तुझे पसंद हैं मगर जानते नहीं कि वो क्या हैं, इसलिए तू हमें दिखा कि ये भी कुर्बानी की राह है जो मुझे पसंद है, वो भी कुर्बानी की राह है जो मुझे पसंद है। तू राहें खोल और फिर उन राहों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। यही जज्बा है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दिल से उठता है, तेरे कूचे में किन राहों से आऊँ, वो खिदमत क्या है जिससे तुझको पाऊँ। मोहब्बत है कि जिससे खींचा जाऊँ, खुदाई है खुदी जिससे जलाऊँ। एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मोहब्बत करूँ और खुदा के नाम से अपनी खुदी को जला लूँ। जो बेनियाजी का मज़मून है वो भी मोहब्बत के ज़रिए नसीब हो सकता है, वरना नामुमकिन है कि इंसान दुनिया से बेनियाज हो जाए। अब ये नुक्ता भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि बेनियाजी करो तो किसी चीज़ से जब तक किसी और से उससे बढ़कर मोहब्बत ना हो बेनियाजी नहीं हो सकती। ये कानून कुदरत है जो लाजमन अमल दरामद होगा, में कोई तब्दीली नहीं। कितना ही किसी से प्यार हो अगर वो उसकी गुस्ताखी करता है जिससे ज्यादा प्यार है, उसके रस्ते में हायल होता है जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अचानक वो बिल्कुल बेहसियत और बेहकीकत होकर दिखाई देगा, उसकी सारी मोहब्बत जाहिर हो जाएगी। बस फरमाया खुदाई है खुदी जिससे जलाऊं, खुदा को अपने ऊपर तारी कर दूं और अपनी नफसानियत के हर पहलू को खाकिस्तर कर दूं। मोहब्बत चीज क्या किसको बताऊं, वफा क्या राज है किसको सुनाऊं, मैं इस आंधी को अब क्यों कर छुपाऊं, यही बेहतर कि खाक अपनी उड़ाऊं। फिर मेरे दिल में जो आंधी चल पड़ी है अल्लाह की मोहब्बत कैसे छुपाऊं, हां मेरे जैसे खाक होकर उड़ जाए इस आंधी से तो यह भी मुझे मंजूर है। और काश दुनिया को पता तो चले कि मोहब्बत अल्लाही होती क्या है। बस मोहब्बत की राहें सीखनी हैं तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी जाएंगी, और इस दौर में उस मोहब्बत के उन्वान को दोबारा जिसने ज़िंदा किया है वो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हैं। بس آن حضور کو دیکھنا ہے تو حضرت مسیح مدد علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھیں, اور خدا کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی آنکھ سے دیکھیں. یہی ایک رستہ ہے جو محبت الہی پیدا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ سب قصے اور کہانیاں ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نمازیں جمع ہوں گی, اور نماز کے معنی بعد ہم نے چونکہ سفر پہ جانا ہے اس لیے دعا میں